بسم الله الرحمن الرحیم و اینکا اولوزین کفرو لیوز لقومه که به ابساره لما سمان لکر و یا علوم اینه لنجمون و ما هو الا ذکر للعالمین اللهم صل علی محمد و آل محمد
و عجل فرجه.
برات علی، برات علی،
میں کہتا ہوں سب چیزوں کا تعلق دل سے ہے۔ دل اگر صاف اور شفاف ہو تو سامنے والا خود پیار کرنے لگتا ہے۔ تحفہ اور سامان جیسی چیزیں ذیلی حیثیت اختیار کر جاتی ہیں۔
بھائی تمہاری باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن تمہاری مہارت کھانے پینے کے معاملے میں ہے۔ عورتوں کے بارے میں سید جمال کو اپنی رائے کا اظہار کرنے دو۔
دیکھو کتاب تحفے میں دینا بہت اچھا ہے لیکن اس کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ منگنی کے دوران نہیں دینا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ جو تحفہ تم دے رہے ہو وہ نیا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اپنی سیکنڈ ہینڈ کتاب اٹھا کر اس خدا کی بندی کو دے دیں۔
نہیں بھائی، میں سیکنڈ ہینڈ کتاب ہی دوں گا، یعنی ایسی ہو جس کو میں نے خود پڑھا ہو۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میری بیوی کیا پڑھ رہی ہے۔
لیکن میری نظر میں تم جو چاہتے ہو عید کے دن اپنی بیوی کو پہلا تحفہ دے دو، بہتر نہیں ہے کہ تم دیکھ لو کہ اس کو کیا چیز پسند ہے، وہی چیز اس کے لیے تم خرید لو۔
کیا پسند ہے؟
کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم لوگ چار مہینے سے ایک دوسرے کے محرم ہو۔
ارے کیسی محرمیت، ہم نے جب بھی اس سے ملنا چاہا اس کے والد نے اس کی بہن کو اس کے ساتھ بٹھا دیا۔
عطر کیسا رہے گا؟
ارے بھائی یہ میری نظر میں بہت بہترین چیز ہے، یہ ایک سٹینڈرڈ بھی ہے اور سمپتھک پیرا سمپتھک سسٹم کو منظم بھی کرتی ہے۔
لیکن تمہاری ایک مہینے کی اسکالرشپ لگ جائے گی، کم سے کم ایک سے ڈیڑھ لاکھ تومان خرچ ہو جائیں گے۔
اب میں اپنے وظیفے سے نہیں لوں گا، اپنے والد سے لوں گا۔ میرے والد بہت اچھے ہیں، جب بھی میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے پیسے دے دیں وہ دے دیتے ہیں۔ میں اپنی کتابوں کے لیے خرچہ کرنا چاہتا ہوں، انکار نہیں کرتے۔ السلام علیکم۔
علیکم السلام۔
آپ کب سے یہاں کھڑے ہیں؟
البتہ مجھے توفیق حاصل نہیں ہوئی کہ پوری بات سن لوں، لیکن جہاں سے تم نے اپنے والد کی جیب خالی کرنے کی بات کی میں نے سن لیا۔ ایڈوانس کے طور پر یہ لے لو، اور اپنی مبارک جیب سے رنگ کے دو ڈبے خرید لاؤ، کیونکہ رنگ کر کے یہاں لٹکانا ہے اس کو۔ اس کے بعد ہم بیٹھ کر حساب کریں گے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تم نے اپنے اوپر خرچ کر لیے یا صحیح جگہ خرچ کیے۔ چلو چلو، میں آپ لوگوں پر قربان، آپ لوگ بھی اپنے درس و مباحثے میں لگ جائیے، اس سے بہتر باتیں سیکھ جائیں گے۔ کوئی بھی آپ سے تحفے لینے اور دینے کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ اس حد تک اپنے وقت کو کاہلی میں ضائع نہ کریں، انشاءاللہ ایسے کام کریں کہ اس مدرسے سے صاحب جواہر کی طرح بن کر نکلیں۔ آپ کی خدمت ہمارے لیے افتخار کا باعث ہو اور ہم فخر کریں۔ بولتے بولتے تھک گیا میں۔
ان دنوں مجھے کچھ زیادہ ہی پتا چلا کہ ہمارے بیچ کتنا فرق ہے۔
تم نے صرف ایک مرتبہ اپنی ماں سے بات کی ہے، تم کس طرح اس نتیجے پر پہنچی ہو؟
محمد حسین، وہ خاتون ابھی اپنی ماں کے انتقال کو کچھ دن نہیں گزرے ہیں اور اپنے باپ کا گھر بیچ رہی ہے۔ تمہاری نظر میں ایسے شخص کو پہچاننے کے لیے کتنا وقت لگے گا؟
ان کو شاید مالی پریشانی ہو جس کی وجہ سے گھر فروخت کر رہی ہیں، تمہیں کہاں سے پتا چلا؟
مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن انہیں اپنی ماں کی حرمت کا خیال تو رکھنا چاہیے۔
ایسے کہہ رہی ہو ان کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے جیسے تم خود رکھ رہی ہو؟ دیکھو میں اگر تمہاری جگہ
محمد حسین، جب تمہاری ماں اتنے برسوں میں تانا چھوڑ دیں گی تو اس وقت تم میری جگہ فیصلہ لے سکتے ہو۔
ارے یہ تو برات علی ہے۔
سلام۔
سلام
سلام،
آؤ بیٹھ جاؤ۔
بہت شکریہ، میں تمہیں زحمت نہیں دوں گا، ٹیکسی پکڑ کر چلا جاؤں گا۔
بیٹھو بھائی، دو منٹ لگتے ہیں وہاں تک۔
لیکن میں۔
ارے بیٹھ بھی جاؤ۔
ٹھیک ہے۔
عطر کی خوشبو
کیا؟
میں نے سوچا یہ خوشبو رنگ کی ہے۔
کیا اچھی خوشبو نہیں آ رہی ہے؟
ویسے زیادہ نہیں، لیڈیز کا لگ رہا ہے نا۔
محمد حسین، میں نے ایک عطر خریدا ہے اپنی بیوی کو دینے کے لیے، اپنی بیوی کو دکھا، وہ بتائیں کیسا ہے۔
اچھا، وہ خود یہاں بیٹھی ہیں، ان سے کہہ دو نا۔ سنو برات علی کیا کہہ رہا ہے۔
فرمائیے۔
عجیب انسان ہو۔ مائدہ بیگم معاف کیجیے گا، میں نے یہ حاجرہ خانم کے لیے لیا ہے، آپ ذرا سن کر دیکھیے گا اس کی خوشبو کیسی ہے۔
ٹھیک ہے، دیکھتی ہوں۔ मुबारक हो, खुशबू तो बहुत अच्छी है।
बहुत शुक्रिया।
मोहम्मद हुसैन आपके बारे में सही कहते हैं।
तो मोहम्मद हुसैन क्या कहते हैं?
आशिक पेशा तलबा।
मोहम्मद हुसैन, अगर मेरा तुम्हारी तरह कोई दोस्त हो तो मुझे कोई दुश्मन नहीं चाहिए। जिस तरह तुम सोच रहे हो मैंने उसके लिए नहीं लिया है। पहली बात तो यह है कि बहरहाल लोग कहते हैं कि इत्र पैगंबर की सुन्नत है। दूसरा यह कि आज रात मैं हाजरा के पास जाना चाहता हूँ। बहरहाल खाली हाथ नहीं जा सकता, कोई चीज अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये ले आया। उसके बाद दरअसल फरीद हमेशा कहता है कि इत्र का इस्तेमाल तिब्बी फायदे का हामिल है और उसके फायदे भी बहुत ज्यादा है।
मैं तो कायल ही हो गई हूं।
मैं भी कायल हूं।
नहीं, मैं हकीकत
मान गया हूँ। मैं संजीदगी से कह रहा हूँ, तुम अपने आप पर क्यों शक कर रहे हो?
बहुत शुक्रिया, मैं यही साइड में उतरूंगा।
नाराज हो गए?
नहीं भाई, कैसी नाराजगी। आशिक तलबा की बात मुस्लिम से सुनने में तो नाराजगी हो सकती है। तुम तो हमारे अपने हो। बहुत शुक्रिया,
सलामत रहें।
जहमत दी, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
क्या मैं तुम्हारी मदद करूं?
नहीं।
क्या तुमने उसके काम को देख लिया है?
हाँ भाई, उसके काम अच्छे हैं, जदीद तर्ज पर काम करता है। अब तुम खुद उसके कामों के नमूने को देख लो।
आरश
जी, तुम्हें उसके डिजाइनों को देखना पड़ेगा, यानी उसका काम बहुत अच्छा है।
सच में?
अभी उसको फोन करके बुला लेता हूँ।
सलाम।
सलाम मोहतरमा।
सलाम वालेकुम।
सलाम जनाब।
कौन है ये, क्या कह रहा है?
पता नहीं। क्या पता नहीं है जनाब, बाउंस चेक दे देते हैं और कहते हैं पता नहीं है।
माफ कीजिए, मैं आपकी खिदमत में हूं, चेक दिखाइए मुझे।
मैं चेक किसी के हाथ में नहीं देता, ये एक हफ्ते पहले का है।
क्या बताऊं, हमारी कंपनी में अब तक इस तरह की बातों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। यकीनन हिसाब किताब की एक छोटी सी गलती है। भाई आरश
बोलो।
जिस वक्त तुम देखते हो मैं मसरूफ होता हूँ, तुम्हारा ध्यान इन बातों की तरफ रहना चाहिए ताकि इस तरह की बातें पेश ना आए।
भाई इनका चेक तो
बहुत खूब। अब यह कि आप एक जहमत कर लें, छुट्टियों के एक दिन बाद बैंक जाकर चेक को जमा कर दें। इस एक हफ्ते के बारे में भी मैं आपसे माफी मांगता हूँ।
ऐसे तो 10 दिन हो जाते हैं जनाब।
मैं 10 दिनों के बारे में भी माफी मांगता हूँ।
मुझे आज ही अपनी तलब चाहिए।
अभी तो नहीं हो सकता ना, आपको खुद भी मालूम है कि बैंक के मामलात हैं, इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता ना।
देखें, मैं आपको 2 दिनों की मोहलत और दूंगा, लेकिन याद रखिएगा अगर ये चेक क्लियर नहीं हुआ तो ये चेक लेकर मैं सीधा आगा शहीदी के पास पहुंच जाऊंगा।
ठीक है, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
आने की तकलीफ उठाई, शुक्रिया।
आप लोगों का एक हफ्ते पहले का चेक था, क्या सच में ध्यान नहीं था?
मेरा ध्यान तो हमेशा प्रोजेक्ट की तरफ होता है आरश, मैं उन चीजों का ख्याल रखना चाहिए ना।
आरश
कहा था कि चेक दे रखा है।
हाँ तुमने कहा था चेक दे रखा, लेकिन ये नहीं बताया था कि पैसे नहीं है। अब तक हमारे साथ ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया था। दूसरे अकाउंट से उसके पैसे दे देंगे।
किस अकाउंट से?
फिलहाल तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा किस अकाउंट से पैसे देने हैं।
वो जाकर अपना चेक डिसऑनर ना कर दे।
अरे मायदा, तुम भी बच्चों की तरह बात कर रही हो। उसको पैसा चाहिए, हम पैसा दे देंगे। जो डॉक्यूमेंट मैंने मांगे थे वो दो।
देती हूँ।
अब हम क्या करें?
मुझे नहीं मालूम।
मेरे अब्बू के पास चलें?
तुम अपने अब्बू के अलावा किसी और से कर्ज नहीं ले सकते क्या?
हर्ज क्या है, कर्जा लेने के बाद उन्हें दे देंगे वापस।
आरश मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी वालिद की मिन्नतें उठाऊं।
मोहम्मद हुसैन 2 दिन बाद वो चेक कैश करने को दे देगा। कैश नहीं हुआ तो हम बेचारे हो जाएंगे, इसलिए देर होने से पहले किसी पहचान वाले से कर्ज ले लेते हैं ताकि देर होने पर वो किसी से शिकायत ना करे।
किससे?
तुम्हारी सास से।
अरे भाई मैंने कुल मिलाकर 3 मरतबा भी सलाम जवाब नहीं किया है, तो ऐसे में उनके पास जाकर क्या कहूँ कि मेरी प्यारी सासू माँ मुझे माफ कीजिए, आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं, मुझे कर्ज दे दें।
मैंने कब कहा कि तुम कहो, मायदा से कहो ना ये कहने को। वो कहेगी आप इतने बरस बाद आई हैं, पिछले की तलाफी कर लें तो कुछ पैसे कर्जा दे दें ताकि हमारा शौहर जेल जाने से बच जाए।
नंबर 1, वो खुद पैसे के लिए मारी मारी फिर रही हैं। नंबर 2, हम और तुम नीचे किस लिए आए हैं?
किस लिए आए हैं?
इसलिए कि मायदा को पता ना चले।
इसलिए?
अच्छा, अगर मायदा को पता चल जाता तो सारा भांडा नहीं फूट जाता?
मतलब हमें ही सबका ख्याल रखना चाहिए, मुझे कुछ लेना देना नहीं।
मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि तुम सोचो।
मेरी किस्मत देख रहे हो मोहम्मद हुसैन, आज जबकि हम बरात अली के लिए रिश्ता मांगने की खातिर जाना चाहते हैं, मुझे कोट पतलून के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन हम आए हैं तार, वायरिंग, थर्मोसेट और बिजली वगैरह जैसी चीजों में उलझ कर रह गए हैं। देखो ध्यान से,
ये इसके फ्यूज
क्या हुआ है?
इसका फ्यूज जल गया है, हमें इसके लिए एक नया फ्यूज लगाना पड़ेगा।
इस वक्त फ्यूज कहाँ से लाऊं मैं? तुम एक जहमत करो, इसको असेंबल करो, मैं फ्यूज तुम्हें ला दूंगा।
मैं बिजली डायरेक्ट कर देता हूँ, लेकिन ये खतरनाक है और मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी।
इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तुम परेशान मत हो, तुम तो बस ठीक करो, एहसान मानूंगा तुम्हारा।
अहमद अली साहब, मैं अभी कितने सालों से आप लोगों के लिए इस मदरसे में बिला आवाज़ और मुफ्त में काम कर रहा हूँ?
तकरीबन 8-10 साल हो रहे हैं। क्यों?
खुदा आपका भला करे। मैं देखना चाहता हूँ कि इन 8-10 बरसों के बदले में क्या आप मेरे ऊपर एक छोटा सा एहसान नहीं करेंगे।
मोहम्मद हुसैन, क्या तुम मेरे लिए काम कर रहे हो? खुदा की राह में कर रहे हो, वही इसका अजर देगा।
हाँ, लेकिन क्या आप खुदा के बंदे नहीं हैं? ये नहीं कहते हैं मल्लम यशकुरिल मखलूक लम यशकुरिल खालिक।
अच्छा, तुम अपने दिल की बात कहो, क्या कहना चाहते हो, बोलो।
अब्बा हुजूर, आपकी बात पर भरोसा करते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उनसे बात करें और आकर वो मेरे लोन की जमानत दे दें।
इतने अरसे के बाद भी तुम अपने वालिद को नहीं समझे हो, वो सिर्फ शादी के कर्जे की जमानत देते हैं और
आप
बस।
कहेंगे तो वो मान जाएंगे।
मैं कह भी दूं तब भी नहीं मानेंगे, कसम खाकर कहता हूँ। भाई, मैं जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा कहेंगे, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ।
तो फिर ठीक है, जाइए, आप फ्यूज लेकर आइए, तब मैं ठीक
करूंगा। अजीब सर फिरे आदमी हो भाई, मैं इल्तिजा कर रहा हूँ, ठीक कर दो भाई।
आप बात कर लेना, मैं उनका बेटा हूँ, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती उनसे बात करने की।
इंसान को अपने वालिद से बात करने के लिए वास्ता ढूंढना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगा,
बात करें
कर लूंगा। हाँ, 2-3 दिन की मोहलत तो दो।
2-3 दिन क्या है अहमद अली साहब, मुझे कल तक जमानतदार के बारे में मालूम हो जाना चाहिए।
ठीक कर दो भाई। चलो ठीक है, मैं बात कर लूंगा, खत्म हो गया, आज ही बात करूंगा, आज ही बात करूंगा।
मैं बेफिक्र रहूं?
बेफिक्र रहो,
सलामत रहें,
जाओ करो, क्या मुसीबत है?
एक तो बुलंद आवाज में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ना है।
वाह वाह वाह, मोहम्मद हुसैन मियां, बल्ब जल गया, सलामत रहो, बहुत उम्दा, माशाल्लाह।
और भी कुछ मुस्तहबात हैं जो नमाज के बारे में जिनका जिक्र बाद में।
हजरत माफ कीजिएगा, मैं आपकी मुबाहसे में मुखिल हो रहा हूँ। आपको पता है यहाँ इमाम जमाना का फौजी कैंप है, यानी इल्म मारिफत की दुनिया में रहते हुए अगर आप नज़्म व इंतज़ाम, तज़यीन और शायर से मुताल्लिक कोई फन न जानते हो तो आपको कोई रियायत भी नहीं मिलेगी और आपकी कोई अहमियत नहीं होगी।
अहमद अली साहब, आप जो कहते हैं कि काम करो, फिक्र हयात का मतलब मालूम है आपको?
क्या तुम इसको फिक्र हयात से रब्त देकर मुझे फंसाना चाहते हो?
नहीं,
कहां की बात कहां लाते हो?
जिम्मेदार लोगों के कामों को जिंदगी में मुनज़्ज़म करने और उनको समाज में नुमाया करने का सिस्टम।
शाबाश शाबाश शेख फरीद साहब, कैसी चीजें आपने सीखी हैं, वाह। शेख फरीद साहब, आप मुझे बताएं कि ये थर्मोसेट क्या होता है?
अलबत्ता इसको एक मशीन का नाम दिया जा सकता है जिसका मुअय्यन दायरे में एक जगह के टेम्परेचर को मुनज़्ज़म रखता
है। मुझे तुम्हारे इल्म पर नाज है, वो जरा पानी गर्म करने वाली मशीन को चेक कर लो, जरा देखो।
अहमद अली साहब, अपना वादा ना भूलें। अच्छा,
ये बारात अली गया है रंग खरीदने, है कहाँ, उसको एक फोन करो।
रंग तो उसने खरीदा है, शायद मंगेतर से मिलने गया है, उनमें से कुछ जल गए, उनको बदलना पड़ेगा।
ये मंगेतर से मिलने जाने का वक्त है क्या? उसका नंबर मिलाओ, नंबर मिलाओ, मुझे उससे काम है।
जनाब, तय ये पाया था कि आप हमारा वास्ता बने, बुलेट हो गया, हम आपका वास्ता बने।
अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ भैया, अजीब मुसीबत है, कमाल है, हद है।
सलाम जी, फरमाइए।
सलाम आतिफा साहिबा, आपकी तबीयत ठीक है?
शुक्रिया।
क्या एक मिनट के लिए हाजरा साहिबा दरवाजे पर आ सकती हैं?
मेरे बाबा से इजाजत ली है।
जाकर कहिएगा कि एक मिनट के लिए दरवाजे पर आ जाएं।
वो नहीं है, बाहर गई है।
सलाम
सलाम।
हम खुश नहीं कि आज की तकरीब के लिए इतनी जहमत उठाओ।
ये हमारे दोपहर के खाने के लिए यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आओ।
लाओ दो, मैं ले चलता हूं।
नहीं, रहने दो, ये खुशबू तुमने लगाई है?
अगर खुदा कबूल करे तो मैंने इत्र लगा रखा है।
तुमने अपने ऊपर जनाना इत्र लगाया है? अम्मी दरवाजा खोले, तुमने अपने पीछे क्या छुपा रखा है?
कुछ नहीं है, अभी बताता हूं।
अंदर आ,
चलो छोड़ो, मैं लाता हूँ।
अंदर आओ बारात अली।
या अल्लाह,
एक मिनट बैठो।
या अल्लाह,
मैं अभी आती हूँ। अम्मी, अम्मी जान।
हाँ बेटी,
आए, ये लीजिए, बारात अली आए हैं।
सलाम अलैकुम।
अलैकुम सलाम बेटे, खुश आमदीन।
माफ कीजिएगा, मैंने तकलीफ दी?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
अच्छा, वो जो तुमने पीछे छुपा रखा था वो क्या चीज थी?
कुछ नहीं था भाई,
कोई चीज थी ना?
ये नाचीज तोहफा।
शुक्रिया। इसी को तुमने अपने ऊपर लगा रखा था?
दुकानदार ने लगाया टेस्ट करने के लिए, मैंने नहीं कहा था।
क्या खूब बरात अली, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हें इस तरह का कोई काम आता है। मैंने सोचा था तुम मेरे लिए कोई किताब लाओगे। बहुत अच्छा है।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। हाजरा।
हाँ बोलो।
मैंने कहा जब मैं आज रात तुम्हारे यहाँ शादी तय करने के लिए आऊंगा तो तुम्हें एक शर्त रख देना।
ठीक है।
तुम्हें पता है क्या शर्त है?
कोई एक शर्त रख दूंगी।
नहीं, वो शर्त जो मैं कहूंगा।
कैसी शर्त?
जैसे तुम ये शर्त रखो कि तुमको मुझसे बहुत ज्यादा लगाव है और मेरी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती हो, और कह दो कि ये निकाह के लिए तुम्हारी शर्त।
किस लिए? किस लिए मुझे इस तरह की शर्त रखनी चाहिए?
किस लिए? इसलिए कि मेरे वालिद ने मेरे लिए ऐसा पेशा मद्देनजर रखा है जो गैर मुल्की ड्यूटियों से भरा पड़ा है।
गैर मुल्की ड्यूटी किस लिए? तो क्या तुम पढ़ाई पूरी करने वाले नहीं थे?
मैं भी तो तुमसे यही कहना चाह रहा हूँ।
तो फिर बताओ क्या है?
काफले का मौलवी।
काफले का मौलवी? ये तो बहुत अच्छी बात है। हम कब साथ चलेंगे?
नहीं, दोनों को साथ नहीं जाने देते। और फिर ये कि मैं चाहता हूँ कि यहीं रुककर अपनी तालीम जारी रखूँ, लेकिन मुझे ये काम पसंद नहीं है।
नहीं, अगर दोनों साथ नहीं जा सकते तो तुम भी नहीं जाओगे। इंशाल्लाह हम पैसे जमा करके दोनों साथ चलेंगे।
खुदा का शुक्र है कि हम दोनों की सोच एक है। मैं बिल्कुल यही चाहता था। अब जबकि ऐसा है तो मैं जाता हूँ और शाम को वापस आता हूँ।
सलाम
अलैकुम। आप कैसी हैं?
शुक्रिया, फूफी हैं?
जी हैं। आइए।
हाँ।
तशरीफ लाए अम्मी जान। खुदा खाना माई है। तशरीफ लाए।
मुझे कोई काम तो नहीं?
नहीं, मुझे कोई काम नहीं है। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। खुश आमदीद मोहम्मद हुसैन।
अगर वो ना माना तो? अगर हम टाइम पर उसकी किस्त ना दें तो हो सकता है वो जमीन हमारे नाम ना करे।
कैसा बदजात आदमी है, पूरी किस्तें उसने टाइम पर वसूल की हैं, ये थोड़ी सी लेट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा?
मान रहा, मैं दो घंटे तक उसका दिमाग चाटता रहा। जो कुछ मैं कह सकता था मैंने कह डाला। वो सिर्फ पैसे चाहता है। अब उस आदमी के चेक का क्या करें?
नहीं मालूम। जो पैसे हमारे पास हैं उसे लोगों को लौटा देंगे, उसकी किस्त देर हो जाएगी, उसकी भरपाई भी कर देंगे। और कुछ
अगर लोन नहीं हो पाए तो फिर हम क्या करेंगे?
फिलहाल तो मेरी सारी उम्मीद इस लोन पे है।
सलाम।
वालेकुम सलाम।
कितना अच्छा काम किया बेटी, तुम आ गई, मुझे बहुत खुशी हुई।
आपके घर में कोई तब्दीली नहीं आई, बिल्कुल पहले जैसा है, पहली जैसी खुशबू।
मैं तुम पर वारी जाऊं? आ जाओ बेटा, यहाँ कोई नामहरम नहीं है।
तुम लोग भी यहीं रहते हो?
जी हाँ, हम यहीं रह रहे हैं नीचे, अलबत्ता आरजी तौर पर।
अगर तुम चाहो तो यहाँ बैठने से पहले अपनी बेटी का घर जाकर देख लो।
कोई हर्ज तो नहीं?
क्या हर्ज है, तुम्हारी अपनी बेटी का ही तो घर है।
ये नाचीज तोहफा।
अरे ये क्या किया तुमने हुदा, तुम्हारी मेहरबानी। चलो चलो आओ ऊपर, मैं तुम्हारा इंतजार करती।
माफ कीजिए, अभी मायदा नहीं है।
माफ करना, मैं खाली हाथ आई हूँ। मेरा दिल चाहता है उसका सलीका देखूं। उम्मीद है वो मुझ पे ना गई हो।
आइए, आपकी मेहरबानी।
मेरे वालिद ने एक फ्लैट मायदा के नाम पे लिखा था, तुम लोग वहाँ जाके क्यों नहीं रहते?
जी हाँ, लेकिन सच बात यह है कि हमारी कंपनी का इब्तदाई सरमाया कुछ कम था, इसलिए हमने फैसला किया कि उसको फरोख्त कर दें।
मायदा ने अपना घर बेचा और तुमने क्या दिया उसे?
इस वक्त तमाम चीजें खुद मायदा के नाम पर हैं, डॉक्यूमेंट्स, दस्तखत का हक, सब कुछ।
यही कि तुम उसके सामने कागज रखते हो और वो दस्तखत कर देती है?
नहीं, उनमें बहुत से घरों के मंसूबों की प्लानिंग मायदा ने खुद की है, और फिर करार पाया है कि इंशाल्लाह जब वो अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री ले लेगी तो फिर मेरी मदद करेगी।
लेकिन तुम चाहते हो उसकी गोद में एक बच्चा दो ताकि उसे घर में बिठा दो।
देखिए वदा खानम, इस वक्त बिल्कुल मसला मायदा के बच्चे पैदा करने या ना करने का नहीं है। मायदा अपने मुस्तकबिल के बारे में बददिल है, उसको खौफ है।
तो वो अपने मुस्तकबिल के खौफ से तुम्हारे साथ चिपकी हुई है?
मेरा दिल नहीं चाहता कि मेरी बीवी अपने खौफ की वजह से मुझसे प्यार करे। मेरा जी नहीं चाहता कि वो पेश आने वाले हर छोटे मसले के बारे में यह सोचे कि अब क्या करना चाहिए।
बहुत से लोग मायदा को चाहते हैं, उनमें से एक तुम्हारी माँ भी है।
मैं आपके अलावा किसी और से मदद नहीं मांग सकता हूँ, क्योंकि बाज़ बातों के लिए सबसे करीब तरीन अफराद भी अजनबी बन जाते हैं। वो बाज़ ऐसे मसाइल हैं जो सिर्फ इंसान के माँ बाप ही समझ सकते हैं और उनके बारे में बात कर सकते हैं। मायदा के साथ भी कुछ अर्सा पहले तक इन दोनों में से कोई नहीं था।
मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुकूंगी, कोशिश करूंगी तुम्हारी और मायदा की मदद करूँ। लेकिन वो माँ जो बरसों तक अपने बच्चे से दूर रही है, इतनी जल्दी सब कुछ ठीक नहीं कर सकती। उससे मोजिज़े की उम्मीद मत रखो।
खुदा बेटी, क्या तुम ऊपर नहीं आओगी?
फरीद, तुम जो इस तबलीग पर नहीं जाना चाहते तो मदरसे में क्यों आए हो? तुम वही दवा वगैरह का काम करते तो अच्छा होता।
हमारे पास काफी डॉक्टर हैं लेकिन हकीमों की कमी है।
दोनों में फर्क क्या है?
मुस्लिम साहब, तुम जो कहते हो कि सुनो और सीखो, अब तुम सुन लो।
मैं तुम्हारी ही खातिर पूछ रहा हूँ।
मेरे भाई, हकीम वो होता है जो तिब्बी मालूमात रखते हुए फिक्ही मसाइल में भी महारत रखता है।
उसे कितनी महारत रखनी चाहिए?
बस जरूरत की हद तक। इसलिए कि हम आए दिन तिब्बी उलूम में नए मसाइल से दो चार होते रहते हैं, इसलिए फिक्ही लिहाज से भी जायजा लेना जरूरी है। मुझ जैसा आदमी जिसने मेडिकल साइंस पढ़ी है, नया फतवा जारी करने के लिए मशवरा दे सकता है। इस तरह से जिस्म और रूह के दरमियान राबता बड़ी आसानी से बरकरार रह सकता है। बहुत आसान सी बात है।
इतनी खूबसूरत गुफ्तगु करता है कि इंसान शशोपंज में मुब्तला हो जाता है और दूसरी तरफ सोचने लगता है।
कनेक्ट करो, बिजली से कनेक्ट करो।
अरे क्या हुआ?
क्या हुआ?
सही हो? क्या हुआ?
नुकसान तो नहीं हुआ?
इससे कुछ नहीं हुआ हाजी अहमद अली,
जरा ध्यान दो।
तुम्हें कहां से मालूम कुछ नहीं हुआ?
चुप रहो। मैं कितनी बार कह चुका हूँ, कोई भी काम करने से पहले सदका दिया करो और आयतुल कुर्सी पढ़ा करो।
तुम कहते हो सदका दो सदका दो, जे में पैसे भी तो होने चाहिए देने के लिए।
लगता है मैं जितनी बार भी मिंबर से सदके के बारे में वाज करता हूँ कोई फायदा नहीं है। जब तुम सदका देते हो, अल्लाह फरिश्ते को हुक्म करता है कि वो तुम्हारा ख्याल रखे। ये इसका सबसे मामूली सा फायदा है।
दोस्तों सलामत रहो। अहमद अली साहब
आ जाओ, मैं यहाँ हूँ। मोहम्मद हुसैन आ जाओ।
पता तो चलेगी सबसे ज्यादा फायदा किसमें है।
तुम जितना सदका देते जाओगे उतने ही फरिश्तों।
क्या हुआ, आपने बात की?
हो सकता
है मोहम्मद हुसैन मियां, इंशाल्लाह किसी मुनासिब मौके पर बात करूंगा इसके बारे में। जरा चूल्हे पर नजर डालो तुम।
जनाब, मैं कर्जदारों के स्ट्रेस की वजह से मर रहा हूँ और आप तामीर के बारे में मुझसे बोल रहे हैं? मैं यहाँ की देखभाल और बिल्डिंग के काम का जिम्मेदार तो नहीं हूँ। बराए मेहरबानी मेरा काम कर दें।
बच्चों के सामने बड़बड़ मत करो, मुनासिब मौका मिलेगा तो मैं जरूर बात कर लूंगा भाई।
हमारा पाला किससे पड़ा, ये मुनासिब मौका कब आएगा?
मुझे क्या मालूम मौका कब आएगा। तुम अपने अब्बा हुजूर के अखलाक को जानते हो, कुछ बातें उनसे यूं ही नहीं की जा सकती।
मुझे नहीं चाहिए, चाहिए। मुझे बिल्कुल आपसे बात करने की जरूरत नहीं।
मोहम्मद हुसैन,
नहीं करनी है।
इधर आओ, इधर आओ। तुम जरा सब्र करना सीखो, मैं बात कर लूंगा।
मेरी कसम बात करेंगे?
हाँ करूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। तुम जरा गैस का चूल्हा
छोड़ने जाने।
छोड़ने वोड़ने की कोई बात नहीं है। अगर तुमको चाहिए तो जाके गैस ठीक करो, मैं बात करूंगा।
आप जाकर बात करें, मैं उसको ठीक कर देता हूं।
जाओ।
वो खुद नुकसान में रहेंगे। ये लो मोहम्मद हुसैन, ये तुम्हारी आज की मजदूरी, खाओ ऐश करो।
ये क्या है?
इसे मैंने खुद बनाया है।
लगता नहीं है कि तुम ऐसी चीजें बना सकते हो।
ये मत देखो कि किसने क्या बनाया है, ये देखो कि क्या चीज बनी है। इसमें से भी लो।
क्या बात है, किसी चीनी रेस्टोरेंट से मुआयदा कर लिया क्या?
नहीं, मैंने तलबा के हुदूद की हमेशा रियायत की है। मैंने तलबा के लिए ये सब चीजें बनाई है।
सलाम अलैकुम।
सलाम
अलैकुम। लगता है गैस के चूल्हे को तुमने ठीक कर लिया है।
हाँ, सिर्फ पाइप जोड़ना बाकी है।
तुम्हारा बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन। पुरानी कहावत है, उसने काम किया जिसने काम मुकम्मल किया। एक नजर जरा इस गीजर पर भी डाल लो, खुदा भला करेगा।
मेरा काम बिल्डिंग बनाना है, मैं हर खराब हुई चीज को तो ठीक नहीं कर सकता हूँ ना।
मैं मुतवज्जे हूँ कि तुम एक एक महीने के बाद यहाँ का चक्कर लगाते हो मेरे प्यारे। ये पुराने हो गए हैं, फरसूदा हो गए हैं, तुम भी लापरवाही करते हो, ये जमा होते जाएंगे। ये काम कर दो। अरे भाई, काम करके आ जाओ।
ठीक है अहमद अली साहब, चलिए। मेरे मसले का क्या बना?
मैंने आगा साहब से बात की है, तुम बेफिक्र रहो। तय पाया है कि नमाज के बाद तुम उनके पास चले जाओ।
मेरे सर की कसम, आपने बात की?
मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ जो कह रहे हो कि कसम खाऊं? मैंने उनसे बात की है, उन्होंने कहा कि सारा हिसाब किताब मेरे पास ले आओ, आमदनी की मीजानिया मालूम होने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो कोई मसला नहीं है।
आपकी बड़ी मेहरबानी,
बहुत शुक्रिया। ये गीजर चालू कर दो तुम जरा, कल यहाँ तकरीब है, लोगों को नहाना होगा।
हाजी अहमद अली।
हाँ,
क्या आप हमें कोई नंबर नहीं देना चाहेंगे?
वहाँ अंदर तुम्हें पेश करना चाहिए था। अब तुम्हारा नंबर तकरीबन 20 है।
हाजी अहमद अली, आप जो लिबास पहनने में इतने बाजोक हैं, बरात अली के लिए आप खुद कपड़ा क्यों नहीं पसंद करते?
तुम्हारी इत्तिला के लिए बता दूं, इंसान का बातिन ठीक होना चाहिए, जाहिर नहीं।
जिसको मालूम नहीं होगा वो सोचेगा दूल्हे आप ही हैं।
मैं जरा सा मेहरबानी से पेश आता हूँ तो तुम लोग मजाक शुरू कर देते हो। बड़ों से मजाक नहीं करना चाहिए। जाओ, अपने काम से काम रखो। जाओ जाओ।
खुदा तुम्हारा भला करे अगर वो बातें जो तुम कह रहे हो अंजाम पा जाएं तो दर हकीकत तुम मुफीद काम भी अंजाम दोगे और शहर की तामीरी तरक्की का भी बाइस बनोगे। जो बात मेरी समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि जब तुम लोग अवाम के पैसों से तामीराती काम करते हो तो तुम्हें क्यों माली कमी से दो चार होना पड़ेगा।
अब्बा जान, आप कोई गैर तो है नहीं। हमने इस कंपनी को बहुत कम इब्तदाई सरमाए से शुरू किया था, इसीलिए हम इस बात पर मजबूर हुए हैं कि जमीन के पैसे के एक हिस्से को उन किस्तों से अदा कर दें। इसी बिना पर यह मसला हो गया। अब क्या बताऊँ, मजदूरों के मुआवजे और तामीराती सामान वगैरह की कीमतों में इजाफे को भी शामिल कर सकते हैं जिन्होंने काम को मजीद खराब कर दिया। हमने चाहा बैंकों के साथ शराकत का तरीका अपनाए, वो भी नहीं हुआ, वो भी अपना खुद तामीराती काम कर रहे हैं।
अच्छा, तो जब तुम लोग इतने बड़े प्रोजेक्ट में हाथ डालते हो तो क्या इस तरह के मसाइल का पहले से अंदाजा नहीं लगाते हो?
आखिर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता अब्बा हुजूर, हर रोज एक कीमत होती है और आए दिन महंगी होती जा रही है। इसी वजह से हमें इस लोन की जरूरत है। यह लोन वाकई हमारे मसले को हल कर सकता है। ये बैंक मैनेजर भी बुरे आदमी नहीं है। बहरहाल आप पर उनके भरोसे की वजह से आपकी जमानत उनके लिए काबिले एतबार है।
यानी दर हकीकत वो मेरी जात और मेरी हैसियत की वजह से तुम्हें इस किस्म का कर्जा देने के लिए आमादा हैं। मेरे बेटे, तुम खुद बेहतर समझते हो कि फिकहुज़्ज़मान मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता है। मुझे इस बात की इजाज़त नहीं है कि निस्बी शोहरत की वजह से इस तरह के प्रोजेक्ट की जमानत ले लूँ।
नहीं नहीं अब्बा हुजूर, वो लोन को तो हमारी कंपनी के एतबार के बिना पर हमें दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये इसका कानूनी तरीक़ाकार है ना, लोन लेना हो तो काबिले एतबार जामिन लाना होगा।
यानी दर हकीकत तुम लोगों के पैसों से जमीन का पैसा भी देना चाहते हो, तामीरात का पैसा भी देना चाहते हो, बाद में अपनी अकसात भी उसी से अदा करना चाहते हो। क्यों ये हो सकता है?
देखिए अब्बा हुजूर, मैंने इस बारे में भी सोचा है। हमने फैसला किया है कि इस तरह के कुछ घरों को, देखिए यहाँ इस जगह को, हमने फैसला किया है कि यहाँ के घरों को जल्दी तैयार करके लोगों के हवाले कर दें और जब उनको घर दे देंगे तो उनसे किस्त जल्दी दरियाफ्त कर लेंगे और उस पैसे से बैंक के लोन को अदा कर देंगे। दर हकीकत मैंने मन्नत भी मानी है कि कंपनी से हासिल होने वाले पहले फायदे से एक नेक अमल अंजाम देंगे, ताहम आपकी निगरानी में।
खुदा ना करे अगर कोई मुश्किल पेश आए और तुम लोग इन अकसात को अदा ना कर सको तो बैंक के सामने कौन जिम्मेदार होगा? उसूली तौर पर जमानत दहिंदा, सही है ना?
नहीं अब्बा हुजूर, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ऐसा मौका हम बिल्कुल पेश नहीं आने देंगे। और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो ये जमीन है ना, इसको फरोख्त कर देंगे और बैंक के अकसात को अदा कर देंगे।
मैं सोचता हूँ कि तुम लोगों ने बुनियादी तौर पर गलत तरीका अपनाया है। मुझे यकीन है कि तुम्हारी नीयत साफ थी और तुम्हारा इरादा सही है, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट में हाथ नहीं डालना चाहिए था जिसमें रिस्क उठाना पड़े। अब भी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें अपने मसले से सदाकत के साथ लोगों को आगाह कराना चाहिए और उनसे मदद की दरख्वास्त करनी चाहिए। मैं वाहिद काम जो तुम्हारे लिए कर सकता हूँ वो ये है कि मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारा काम बन जाए और बस।
इसका मतलब आप मेरा जामिन नहीं बनना चाहते हैं?
मेरे ख्याल में तुम्हारा मसला इस कर्जे से हल नहीं होगा बल्कि और भी बिगड़ता चला जाएगा। कर्जे पर कर्जे का अंबार लगता चला जाएगा, यहाँ तक कि तुम्हारी कमर टूट जाएगी।
आप हमेशा मेरी मदद ना करने के लिए कोई ना कोई बहाना बना देते हैं।
कैसी बातें कर रहे हो मोहम्मद हुसैन? मैंने खुद तुमसे बारहा जायज कारोबार करने के लिए कहा था। हमेशा मैं तुम्हारे लिए दुआ भी करता रहता हूँ कि तुम पुरखलूस काम करो और उसकी लज्जत का एहसास करो।
बातों में हाँ, लेकिन अमल में नहीं। आपने कभी भी मेरी मदद नहीं की अब्बा जान, इसलिए कि आपको कभी मेरे ऊपर भरोसा था ही नहीं। लगता है मेरे ऊपर मीरजाई साहब का एतमाद आपसे ज्यादा है।
जो भी मुझसे हो सकता है वो मैं तुम्हारे लिए करूँगा, लेकिन इस वक्त मेरे लिए ये बात अजहर मिन शम्स है कि अगर इस लोन की जमानत के कागज़ पर दस्तखत कर दूँ तो मैंने तुम पर जुल्म किया है। नहीं, इसमें बिल्कुल सलाह नहीं है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये बात आप शुरू में ही कह देते तो आपका वक्त नहीं खराब होता। खुदा हाफिज।
मोहम्मद हुसैन, क्या हुआ? क्या हुआ?
मैं बिल्कुल मायूस हो गया हूँ। आप बातों के जरिए, अब्बा हुजूर दुआओं के जरिए लोगों से बर्ताव करते।
तुम्हारे अब्बा पहुंचे हुए इंसान हैं, उनकी दुआ मुस्तजाब होती है, बहुत भलाई है उसमें। कहाँ जा रहे हो?
मुझे काम है।
अपना ख्याल रखना। ठहरो, रुको रुको, सुनो, खोलो। गीजर बना दिया तुमने?
नहीं, उनसे कहें कि बैठ के दुआ करें, शायद कि सब ठीक हो जाए।
अहमद अली क्यों परेशान खड़े हो, बारात अली भी आ गया, आ जाओ चले, देर हो गई।
चलो
चाय ले जाओ।
नहीं अभी जल्दी है।
अम्मी मैं और बारात अली आपस में महरम है।
मेरा क्या कसूर है, तुम्हारे अब्बा कहते हैं जब मैं कहूँ तब हाजरा को लाना।
आप लोग वहाँ बैठकर बातें करें, हंसे और मुझे यहाँ पर रखा है।
सुबह 4 बजे काम पर जाता था और गुरुबे आफ्ताब तक कुदाल उठाकर काम करता रहता था। मुझे कोई मसला भी नहीं था, जुमा हफ्ता और शहादत और ईद की भी कोई खबर नहीं थी।
खैर है इंशाल्लाह।
हाँ, जो कोई भी खेती बाड़ी या जरात का काम करना चाहता है उसे 2 काम करने चाहिए। पहली ये कि वो जवान और तंदुरुस्त हो, और दूसरी क्या है,
आपने 100 मरतबा कहा है, जज्बा होना चाहिए।
जनाब मैंने पहले भी कहा है कि जज्बा होना चाहिए।
माशाल्लाह
मुतवज्जे है आप, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझ में जज्बा है, इसीलिए कोई मसला नहीं है। अभी ये मसला मेरी टांगे हैं जिसकी वजह से मैं जाऊँ और आऊँ नहीं कर सकता।
अकबर साहब, क्या आप अपने पाँव की सूरत हाल के अलावा किसी और चीज के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं? हम यहाँ बैठे हैं ताकि बारात अली और हाजरे के बारे में फैसला करें, हमें मसर्रत और खुशी से मुतालिक बातें करनी चाहिए।
इनको अपनी बात कहने दीजिए सिद्दीका बेगम, इनको हलकान होने दें। आप बात करें, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, हम सुन रहे हैं, आप फरमाइए जनाब।
बात हलकान और भारी होने की नहीं है, बात यह है कि मेरे बड़े दामाद को चाहिए कि अपनी कमर बांध ले, उसको सुबह से शाम तक काम में लगे रहना चाहिए।
जी हाँ।
भाई मेरा कोई अपना बेटा तो है नहीं, इसलिए मैं मजबूर हूँ इन जरई जमीनों, चौपायों और भेड़ों को अपने दामाद के सुपुर्द कर दूँ। इसके अलावा ये बारात दली के लिए भी अच्छा रहेगा
जी,
क्योंकि ये तुलाब के वजीफे से अपनी जिंदगी के अखराजात तो पूरे नहीं कर सकेगा। सही कह रहा हूँ ना जनाब?
जी हाँ, यानी नहीं, वो मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि दोनों महासों पर मसरूफ अमल रहूँ, यानी काम भी करता रहूँ और अपनी तालीम भी जारी रखूँ, बस इतना ही। मैं नहीं चाहता कि काम से भागूँ, मैं तालीम भी जारी रखना चाहता हूँ और काम भी करना चाहता हूँ।
अरे भाई तुम नामुमकिनात की बात क्यों कर रहे हो? जो कोई तलबा बनना चाहता है मजबूर है कि सुबह से शाम तक पढ़ाई करता रहे, फिर तुम्हें दूसरे काम का मौका कहाँ मिलेगा, फिर तुम्हें हिम्मत भी तो नहीं रहेगी। मेरे बातों के गवाह ये मेरे हाथ हैं, देखो कितने गट्ठे पड़ गए हैं, जरा अपने हाथ तो दिखाओ, दिखाओ।
अकबर साहब माफ कीजिएगा, मैं सोचता हूँ कि आप गलती पर हैं। आयतुल्लाह तबातबाई खेतीबाड़ी भी करते थे और मुतालिया भी करते थे।
बारात बेटे मेरे लिए वाज मत करो, मैंने कहा अपना हाथ दिखाओ। यहाँ तक के इसको अपना हाथ दिखाने में भी शर्म आ रही है।
जी बहरहाल, अगर आप लोगों का हंसना खत्म हो गया हो तो मैं अदब के साथ आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, इजाजत दीजिए।
आप साहिब इख्तियार हैं, आपको इजाजत है, आप फरमाइए।
जी मेरे मोहतरम अजीज अकबर साहब की खिदमत में अर्ज करता हूँ कि ये बारात अली मियाँ अगरचे सब की नज़र में शेख साहब हैं, लेकिन आपके खानदान के बन गए हैं हल्का बगोश गुलाम। ठीक है, कोई एतराज़ नहीं है, हमें कबूल है, लेकिन ये बात जो आप कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये अपना दीनों ईमान छोड़कर मुकम्मल तौर पर दुनिया के काम में मसरूफ हो जाएं और आपकी खिदमत में हाजिर हों।
मेरे अजीज, अगर मेरे पाँव में ये परेशानी ना होती तो ये साहिब इख्तियार थे, जो इनका दिल चाहता करते, लेकिन अब जबकि ये परेशानी मेरे साथ है, इन्हें कमर हिम्मत बांध के मेरे साथ आ जाना चाहिए। बात सिर्फ 2 लोगों की जिंदगी की नहीं है, बल्कि बात 2 घरानों की और उसमें रहने वाले लोगों की है। बोलिए।
जरा मेरी भी एक अर्जदाश्त है, अगर आप तवज्जो दें तो। उम्र भर दिन से रात और रात से दिन गुजारता रहा किस लिए? मेरी आरजू ये है कि मेरा पहला बेटा आलिम दीन बने और उलमा का लिबास पहने, यानी मेरे पास जो कुछ भी था उसको इस बात पर सर्व किया कि ये लड़का एक जलीलुल कद्र आलिम दीन बन जाए। लिहाजा मैं ये कबूल नहीं करूंगा कि वो कुदाल पकड़कर जमीन व आबपाशी के पीछे लग जाए। मुख्तसर ये कि वो दुनियावी कामों में लगकर अपने कामों में मसरूफ हो जाए, मैं ये नहीं चाहता।
ऐसी बात कर रहे हैं जैसे दुनियावी काम नहीं कोई गलत काम कर रहा हो। अरे भाई, ये मेरी, अपनी बीवी की और अपनी सास की मदद करेगा, अगर ये अपना सारा वक्त पढ़ाई में लगाएगा तो मेरी मदद कौन करेगा? मेरी तो सारी जिंदगी बर्बाद होकर रह जाएगी।
यही ना कि आप अपनी जराई जमीनों से मुतालिक, अल्लाह के बंदों के मसाइल के बारे में सोच रहा हूँ जिनकी कोई हद नहीं है और इन जैसे नौजवानों के जरिए हल होने चाहिए, ये है हमारा मसला।
अच्छा हुआ आपने यहाँ ये बात छेड़ दी, बहुत अच्छा हुआ। मैं आपसे ये कहना चाहता था कि ये आलिम लोग जो सुबह से शाम तक अपने कमरों में बैठते हैं और अपने ही बारे में सोचते हैं और अपने अतराफ के बारे में कुछ नहीं सोचते।
राना बेगम, ये लीजिए ना आप।
और चाहते हैं कि लोगों की मुश्किल हल हो जाए, लेकिन चार नसीहतें कर लेने से और दो तकरीरें कर लेने से, थोड़ी बहुत बात कर लेने से चार लोगों का पेट तो नहीं भरा जा सकता है सिवाय खुद उनके।
अजीब है, अजीब है। आपका मसला ये है, आपको बुरा ना लगे, मैं अपनी बहन से माफी चाहता हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ, माफी का तलबगार हूँ, माफ कीजिए। तुम और तुम्हारे जैसों की तमाम ख्वाहिशात और आरजुएं यही पेट और खाना पीना है और ज्यादा से ज्यादा अशिया को सब्जी मंडी तक पहुंचाकर अल्लाह के बंदों के सुपुर्द करना है ताकि वो अपने कामों में लग जाए।
एक मिनट इजाजत दीजिएगा, माफ कीजिएगा, अगर मेरी जगह कोई डॉक्टर होता तो क्या आप यही सवाल करते? मेरी नजर में आपकी दलील गलत है। बहरहाल वो भी सुबह से रात तक अपने क्लिनिक में काम करता रहता है। अगर वो किसी बीमार का इलाज करता है तो क्या जरूरी है कि वो गंदगी में जाकर के बैठे या उसका इलाज करे? क्या इस तरीके का सोचना दुरुस्त है?
चलो तुम ठीक कह रहे हो।
माफ कीजिएगा, आपने एक शुबा उठाया जिसका मैं जवाब देना चाहता था और कुछ नहीं।
नहीं भाई, तुम ठीक कह रहे हो, तुम ठीक कह रहे हो।
अकबर साहब मेरी तरफ देखो, उसी पुरानी रविश पे आ गए ना?
कौन सी रविश?
वही पुरानी वाली जिद और रट।
कौन सी जिद और कौन सी रट?
माफी चाहता हूँ, वही उलमा की मुखालिफत करने वाली पुरानी रविश।
अरे भाई पूछना क्या, उलमा की मुखालिफत हुआ?
मेरे भाई सवाल करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम सवाल नहीं कर रहे हो, शुबा पैदा कर रहे हो, और इसकी वजह यह है कि तुम गाफिल हो, तुम बिल्कुल भी मुतवज्जे नहीं हो, तुम उम्मुल गाफिलीन में से हो।
अब आप लोग बस भी करें, सलवात भेजिए।
शैतान पर लानत।
माफ कीजिए अकबर साहब,
बोलिए
आपने ये जो भी बातें की उनका क्या मतलब है?
मैं बताता हूँ, इसका मतलब यह है कि तुम आलिम दीन को बेटी देना नहीं चाहते, बस बात खत्म।
आपको जो भी अच्छा लगे समझते रहिए,
उठो,
जो बात हो लेती हो गई।
चलो उठिए मोहतरमा।
ये क्या बात हुई? हम यहाँ पर शादी ब्याह की बात करने आए हैं, ना कि कोई लड़ाई झगड़े की।
अरे भाई आप तशरीफ रखिए ना, अकबर साहब ने एक बात कह दी, आपने भी तो उसका जवाब दे दिया ना, इसमें रंज होने की क्या बात है?
सिद्दीका बेगम ये मसला आसानी से हल नहीं होगा, अलग किस्म का है।
जी हाँ, हमारा मसला अलग किस्म का है, आसान नहीं है। मैं सुबह से शाम तक एक वक्त की रोटी के लिए मेहनत करूं और आप आए और इसको खत्म कर दें, और ये जनाब आए और आकर मेरी आखरत को सुधारें, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। नक्द को छोड़कर उधार को पकड़ लूं।
अहमद अली साहब, मैं गुजारिश करती हूँ आप मत जाइए।
बरात अली और हाजरा की महरूमियत, अब से जब तक बरात अली अपनी सूरत हाल वाज़े नहीं कर देता, बात इन है या आलम दीन का लिबास या हाजरा, किसी एक का इंतखाब करना होगा।
साहब माफ कीजिएगा, वली की इजाजत निकाह जारी करने के लिए शर्त है, लेकिन अदम रजायत से बातिल नहीं होता, हमें आपस में बैठ के बात करनी चाहिए।
देखो मेरे लिए तुम तकरीर मत करो, मैं खुद तोड़ दूंगा, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। जब तुमको बात करनी चाहिए थी तुमने नहीं की, तुम्हारी जगह तुम्हारे बाप ने तकरीर शुरू कर दी। हाँ
तुम जाओ, ये मसला उस मसले से अलग है, जिद ना करो।
अहमद अली तुम तो जानते हो ना कि मैं जिद्दी हूँ, क्यों, ये मेरी हाजरा भी मेरी तरह है, इसलिए बेहतर होगा तुम अपने बेटे का हाथ पकड़ो और यहाँ से चले जाओ।
खुदा तुम्हें शिफा अता करे।
खुदा मुझे शिफा दे।
चलो चलते हैं,
जाओ,
हमने जहमत दी, माफी चाहता
हूं। अरे मत जाइए।
चलो चलो चलो
जाओ, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा दिल और मेरी जान ले गया मेरा दिल बर, मेरा दिल मेरी जान ले गया मेरा दिल बर। अच्छा लगा मुझे तो मालूम था हम कहाँ जा रहे हैं, किससे हमारा पाला पड़ा है, मैं चाहता था तुम्हारी बात को टालू नहीं। वो आदमी कैसा अकड़ा हुआ था।
अरे अहमद अली साहब बस करिए, सलवात पढ़िए,
खुदा उसको शिफा दे और हम सबको भी शिफा अता फरमाए। अगर उसका दिल चाहे कि उसका दामाद भी आलिम दीन हो तो उसके लिए लियाकत चाहिए, उसमें नहीं है, नहीं है ना, उसको पता ही नहीं है, नहीं है। रिश्ते के लिए लड़कियां बहुत मिलेंगी, तुम अपनी आंखें खोलो, यहाँ मालूम होता है कि असलियत क्या है। अगर अपना दीन ईमान दोगे तो सब कुछ गया, नहीं दोगे तो सब कुछ बच गया। चलो छोड़ो, जो हो गया वो हो गया, खाक
बस करो, गीबत मत करो,
जाने दो। हाँ ठीक है,
मायदा बेटी मोहम्मद हुसैन के साथ मशवरा कर लो, हम जरा दाऊद साहब के घर जा रहे हैं, अगर तुम लोग चाहो तो तुम भी हमारे साथ चलो।
कुछ हुआ है क्या?
नहीं बेटी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम तुम्हारी खाला जोहरा के यहाँ जा रहे हैं उनको दिलासा देने।
अमीजान मोहम्मद हुसैन थके हुए हैं, वो नहीं आ सकते, लेकिन मैं खुद आती हूँ और आपको पहुँचा दूँ।
हाजिया बेगम, कोई बात नहीं, हम खुद चले जाएंगे।
बेटी, हम तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे, हम खुद चले जाएंगे, शुक्रिया।
नहीं नहीं, आप रुकिए, मैं खुद आती हूँ, आपको पहुँचा भी दूंगी और जोहरा खाला से भी मिल लूंगी।
ठीक है बेटी, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं यहाँ। आगा साहब, आप जब भी मदरसे से आते हैं इतनी देर करते हैं कि हम हमेशा देर से पहुंचते हैं। अगर जल्दी आ जाते तो हम खुद एक टैक्सी लेकर चले जाते, इसे तकलीफ ना देते।
अभी बेगम, हम इब्नुस्सबील नहीं बने हैं, हम विर्द करते हुए जवानों की तरह चल सकते हैं।
कहाँ आगा साहब, हम इंतजार कर रहे हैं, मायदा अभी आ रही है।
नहीं, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, कोई बात नहीं।
हाजी अब्दुल हुसैन, अगर हमारी बेटी हमसे दूर है और खुदा रहमत करे हमारा मुर्तजा हमारे पास नहीं है, उनके बजाय खुदा ने हमारे नसीब में एक प्यारी सी बहू दे दी है।
एक प्यारी सी बेटी हमें हमारे नसीब ने दे दी है।
बहुत शुक्रिया।
मायदा बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक काम कर दो।
जी बोलिए।
कल अपनी माँ के पास चली जाओ, उनसे कह दो हाजी हबीब की वसीयत के मुताबिक नरगिस खानम के बाद वो वक्फ की निगरान हैं। एक दफ़ा मेरे पास आ जाएं ताकि मैं उनके मौकूफात की आमदनी और अखराजात के रजिस्टर दिखा दूँ। यही
ठीक है, मैं मोहम्मद हुसैन को बोल दूंगी, वो चले जाएंगे।
अगर मैं चाहता मोहम्मद हुसैन ये काम करे तो मैं खुद उससे कह देता, मेरी बेटी ये काम जो मैंने तुमसे चाहा है ये कर दो, यकीनन इस पे कोई खैर है।
जी।
झगड़े और इनाद का कोई नतीजा नहीं मिलता मेरी बेटी। इंसान को अपने दुश्मन के साथ दुश्मनी करनी चाहिए, इंसान को अपने नफ्स के साथ दुश्मनी करनी चाहिए। अगर आज तुम किसी की गलती से दरगुजर करोगी तो खुदा कयामत के दिन तुम्हारे गुनाह से दरगुजर करेगा।
اینجا برای سنوشتن هوا کمه